आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
जिस लय की बात एक दो वाक्यों में मैंने परिचय में कही थी, आप सबने देखा कि नरेश जी ने सभागार में उसको कैसे मूर्त रूप दिया, न सिर्फ श्रीकांत जी की कविताओं में बल्कि इस लय की जो नई कविता में जो परंपरा है उसके कुछ उदाहरण भी हमारे सामने रखते। वक्तव्य सत्र व्याख्यान सत्र अपने समापन की ओर है और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय अलंग से मेरा निवेदन है कि वो इस सत्र का समापन करें। वक्तव्यों में जो भी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि उसके प्रमुख अंशों को अगर फिर से हमें बताना और श्रीकांत जी के बारे में जो उनकी राय है वो भी हमारे सामने रखें। लेकिन इससे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर संजय अलंग का 1964 में भिराई में जन्मे डॉक्टर संजय अलंग के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, शव, पगडंडी छिप गई थी और नदी उसी तरह जिंदा थी जैसे कोई बाघ था। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति पर इन्होंने 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं इनकी, जिनमें से छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का श्रेष्ठ शोध शिक्षा संगठन का 1,00,000 रुपये का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कविता पर दिनकर और श्रीकांत वर्मा सम्मान समेत कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, समाज समीक्षाएँ आदि भी प्रकाशित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। तो हम अध्यक्ष को
एक तो चालू है आपका वाला
सिर्फ इस सत्र का समापन करें बल्कि अपनी बातों से भी हम लोग को आलोचित करें और इसके बाद छोटे दो और बातें हैं जो तो मैं पहले ही कह देना चाहूँगा ताकि आप अचानक सोच ना जाए कि अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद स्वल्पाहार का आयोजन है हमारे दाहिने में और रचनाकारों को हमारे इस पीठ के अध्यक्ष श्री राम कुमार जी इस समिति में पेश करेंगे। डॉक्टर संजय अलंग,
नमस्कार मित्रों। आदरणीय और स्नेह से नरेश सक्सेना जी, विनोद जी, हम सब पीठ उपस्थित श्रीमती वर्मा जी, जयप्रकाश जी, दीप जी और पीठ के अध्यक्ष श्री राम कुमार तिवारी जी उपस्थित हम सबसे सुविजन और भी ज्यादा योग्य सभासद, आज एक बहुत अच्छे पीठ की तरफ से एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के साथ इसका आगाज हुआ है। हम सबको छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और पीठ का स्वागत करना चाहिए तालियों के साथ। पीठ की इस पहल में इस सहभागिता के लिए सबने बहुत उत्साह से भाग लिया, विशेषकर जो मंच पर बैठे हैं और वे जो लोग आज सब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। और जब नरेश जी ताल दे रहे थे तो मुझे नायक जी की याद आ रही थी कि आज शाम का सत्र कितना मनोरंजक होने वाला है और उस सब में आपकी उपस्थिति जरूर रहेगी जब उन कविताओं का नाटकीय मंचन किया जाएगा और जब अन्य कवि जो आए हैं वो श्रीकांत वर्मा की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको अपना कविता पाठ सुनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप और भी आनंद से विभोर होंगे। कविता ताल के रूप में आएगी तो और भी अच्छी लगेगी, संदेह की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत छोटे से व्यक्तित्व के साथ चीजों को समाप्त करना चाहूंगा। जब भाषण की शुरुआत में गीत जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को इंगित किया, मैं जो श्रीकांत वर्मा को आपके जहन में लाना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी कविताएं विमर्श केंद्रित या समस्या केंद्रित हो जाती हैं। श्रीकांत उस रेयर कवियों में से हैं जो उसका हल सुझाते हैं, चाहे वो तीसरा रास्ता बना रहे हो या रचना की प्रक्रिया की तरफ आपको उत्प्रेरित कर रहे हो। ये बहुत कम कवियों में ये क्षमता होती है कि वे आपको विमर्श और समस्या से निकाल कर हल की ओर ले आए। भारतीय कविता, संपूर्ण भारतीय कविता के साथ या भारतीय रचना कर्म के साथ ये बहुत बड़ी, जब वो पश्चिम में जाती है समीक्षा के लिए और चीजें जब रेखांकित होने लगती हैं, तब ये बात समझ में आती है कि वो ज्यादा विमर्श केंद्रित होने के कारण आउट ऑफ ट्रैक होती चली जाती है। तो हल की तरफ आपको बढ़ाने के लिए श्रीकांत वर्मा को हमेशा याद किया जाएगा और उस एक नए ट्रेंड की स्थापना के लिए श्रीकांत वर्मा सदा आपके पास रहेंगे। कवि कर्म कैसे आगे बढ़ता है, परिस्थितियां कैसे उसको उद्वेलित करती हैं, परिस्थितियों से कैसे आप आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छे से उस चीज को आपके जेहन में इंगित किया। वो एक विस्तृत वक्तव्य था और पढ़े जाने योग्य है। आप उसका प्रिंट लेके एक बार और पढ़ेंगे तो और भी चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। विनोद जी ने जो बातें की, वो मेरा ये मानना है कि किस तरह के पीठ के साथ एक तो सत्र और होने चाहिए। जिन लोगों ने श्रीकांत वर्मा जी के साथ समय गुजारा है, वे आपको अन्य चीजों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर पाते हैं, जो सिर्फ कविता या रचना कर्म नहीं होता परंतु उनके व्यक्तित्व से निकली हुई चीजें होती हैं। और उनके कन्फेशन के विषय में जो इन्होंने बहुत शिद्दत के साथ बात की, मुझे तो लगता है कि इस पुस्तिका को पीठ को अब अपनी तरफ से छपवाना चाहिए। वे झकझोरने वाले और उद्वेलित करने वाले कवि रहे हैं श्रीकांत वर्मा। समय से सीधा टकराव रखते हैं, वे कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं रखते, सीधे सामने खड़े हो जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अंदर तक तिलमिलाते हुए मन के माध्यम से प्रत्येक मानवता विरोधी ताकतों और गतिविधियों से सीधे साक्षात्कार करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के संपूर्ण मानवतावाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद को भारतीय संदर्भों में जिस तरह से व्याख्यित किया है और उसको वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ आप सब उससे गुजरे होंगे, उसके मानवतावाद को सीधे आपके सामने खड़ा कर देते हैं। उनकी स्थानीयता पूरी मानवता से जुड़ जाती है, मगध केवल मगध नहीं रह जाता, वो पूरे विश्व के रूप में आपके सामने आ जाता है। और ये जब मगध आपके सामने खड़ा होता है तो आप पाते हैं कि पूरी मानवता आपके सामने खड़ी है, वो केवल अशोक अकेला नहीं है जो गम मना रहा है, उसमें आप भी सम्मिलित हो जाते हैं। जब भी कोई भी रचना कलाकार होता है तो उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान व्यवस्था कैसे बदले, चाहे वो चित्रकारी के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, वो वर्तमान को बेहतर बनाना चाहता है। और वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में कई बार वो समस्या तो उठा लेता है परंतु उससे हल की ओर बढ़ता प्रतीत नहीं होता। श्रीकांत इसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, वे मुखर हो जाते हैं, हल बताने और समस्या को पछाड़ देने के उपाय करने में वे थोड़ा बहुत शिद्दत से आगे आते हैं। पूरी ताकत और फिरवत से ना सिर्फ समस्या से टकराते हैं परंतु उसके लिए कोई एक लेआउट निकालने की भी कोशिश करते हैं। बावजूद उसके कि उनकी कविता में नाराजगी, असहमति और विरोध का स्वर अधिक तेज और मुखर है, उनकी कविता हर अमानवीयता, झूठ और फरेब आदि के विरुद्ध न सिर्फ प्रतिरोध का सार्थक वक्तव्य है बल्कि थोड़ा धीरज विहीन होकर हिंसक प्रतिरोध भी है। वह हड़बड़ी, उत्तेजना और उद्वेलना में हृदय से कविता के रूप में व्यक्त होते हुए भी निर्ममता को पूरी तरह से दूर रखता है तथा मानवता, मानव कल्याण और प्रकृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ता है। उनकी कविता, जिसको आजकल मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, हिस्ट्री लिखता भी हूँ, तो हिस्ट्री में अब एक नया ट्रेंड आया है जिसको हम जनता का इतिहास कहते हैं। जनता का इतिहास जनता के लिए, अपनी एक कविता में मैंने ये लिखा भी था कि बन और बिगड़ हम रहे हैं पर नाम बार बार राजा का आ रहा है। उसको आजकल एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो श्रीकांत की कविता सोशियो इकोनॉमिक कविता, वो पूरी तरह से जनता के पक्ष में, जनता के साथ, जर्रे जर्रे के साथ खड़ी है, जनता की आवाज और जनता की कविता है। यह कवि समय से सीधा संवाद करता है और सीधे मानवता के साथ खड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ता है, उद्देश्य और कर्म को सफल बनाता है। और वो इतनी शिद्दत से आगे बढ़ता है कि गालिब की पंक्ति याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, तो हम खड़े रहेंगे साथ में आगे बढ़ेंगे, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक तरह इसको संवाद को एक अलग तरीके से सामने रखते हैं, नए आयाम और मुखर आवाज देते हैं। नए आंदोलन और नई कविता पे नरेश जी ने तो बहुत ज्यादा अच्छे से बताया कि जिसमें आतुकाम गत परंपरा के बारिश होने के बावजूद उसमें कितनी लय और ताल है और जो अभी तक समाज तक के दिमाग में गुंजायमान हो रही है। श्रीकांत वर्मा की कविता विश्व और भारत के समाज और विशेषकर राजनीति के अंदर स्थित व्याप्त व्याधिग्रस्त मानवीय व्यवहार कार्यों और प्रवृत्तियों को पूरी ताकत से सामने रखती है और तीखे स्वर में अभिव्यक्त करती है। वे इतिहास से बहुत अच्छे प्रतीक उठाते हैं जो आप सबको हांट भी करते हैं, आप तक संप्रेषित भी होते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आते हैं और आपको बहुत स्पष्ट होता है कि ऐसी चीजें क्यों हुई। इतिहास पुरुषों और इतिहास के स्थलों के माध्यम से आधुनिक जीवन के तीव्र द्वंद्वों को निशाना बनाया और सफलता के साथ अभिव्यक्त और संप्रेषित किया। वे अंदर की आग और उसके तप्त बहते लावे को अभिव्यक्त करने में सफल रहे, बहुत सफल साहित्यकार रहे। संभवतः अगर मैं समझूं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और श्रीकांत वर्मा उन रेयर साहित्यकारों में से हैं जो सीधे समय से संवाद करते हैं और एकदम सीधी तरह से उससे टकरा जाते हैं। जब वे कहते हैं कि केवल अशोक लौट रहा था तो वो व्यंजना इतनी विस्तृत होती है कि उस केवल अशोक में अशोक नहीं रह जाता, उसमें हम सब सम्मिलित हो जाते हैं और वो आपको इतनी संवेदना के साथ आपकी उंगली पकड़कर धीरे धीरे करामा करामा अपने साथ लिए चलते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि अशोक के साथ कब आप चल पड़े। और यही उनकी सफलता है और यही उनका बिलासपुरपन है। नरेश जी अभी रास्ते में मेरे से आते हुए बोल रहे थे कि अगर वो मेरे घर नहीं आता तो मैं उसके घर चला जाऊंगा वाला व्यक्ति जो एक कविता पंक्ति है, तो ये वही कविता पंक्ति है जिसमें वो आपको भी साथ लेकर चलने के लिए उद्वेलित कर रहे होते हैं और मैं समझता हूँ कि आप सब उसमें साथ चलने के लिए आवश्यक रूप से प्रेरित हुए होंगे। और जब वे ये कह रहे होते हैं कि कोसल में विचारों की कमी है तो आपका विचार जरूर कौंधे लगता है और शायद इसका फिल्म सेट जो माइंड में आपके सेट किया जाना था वो वहीं पर हथौड़े की तरह वार करता है कि आपने विचारों की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आपके विचार बने रहे, बिलासपुर का गर्व बना रहे। बस प्रसंग बस उल्लेख करना चाहूंगा, जब विनोद जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो राजकिशोर जी का नाम आया, श्रीकांत वर्मा जी का नाम आया। अब संयोग से राजकिशोर जी के नाम से बिलासपुर में एक नगर है और श्रीकांत जी के नाम से एक मार्ग है, तो अच्छा है शहर उनको याद करता है और शिद्दत से याद करता है। हालांकि श्रीकांत वर्मा मार्ग में जिन लोग हैं उनको ये बताने की जरूरत पड़ती है कि श्रीकांत वर्मा कौन थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और हम सबका उत्साह बढ़ाया है, विशेषकर राम कुमार तिवारी जी। राम कुमार तिवारी जी खड़े होना मालूम, ये राम कुमार तिवारी जी हैं, ये सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को किसी तरह से आगाज करने के लिए। एक बार इनके लिए छोटी तालियां हो जाए। इन्होंने पूरे मेहनत के साथ इन सब महाविभूतियों को यहाँ के खींच लाने में सफल हुए हैं और हम सबको ये अवसर दिया है कि हम इनके साथ स्पीच शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच आप सब जनता को, आप सब लोग आए जो सुधी जन आए और धैर्य के साथ सुना, धैर्य से मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। थैंक यू,
धन्यवाद संजय जी। नजदीक के अध्यक्ष श्री राम कुमार तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर उपस्थित साहित्यकारों को स्थिति से चिन्हित करें। उसके बाद जलपान का कार्यक्रम है छोटा सा और अगले सत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपकी उपस्थिति के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जरूर उपस्थित रहें। और जब समाज के दिन हम श्रीकांत जी के साथ रहे हैं इस समाचार में, अगला सत्र 4:30 बजे से है, 4:30 से 6:30 बजे तक कविता पाठ का सत्र है। उसमें नरेश जी हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं दिल्ली से, बी चतुर्वेदी भोपाल से, शरद गोदासपुर से, कृष्णा बनर्जी अडवाणी आगरा से, विश्वासी अत्याशी हैं अंबिकापुर से और विनय साहिब लखनऊ से। तो इस आयोजन में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब हमारे साथ होंगे और कविताओं को सुनेंगे। और उसके बाद जो अंतिम सत्र है वो 6:30 से है, रंग प्रस्तुति का सत्र।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।